Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Aradesh Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhagavad Bhaktajan, Krishna Yajurved ke antargat तैतिरीय शाखा के श्वेताश्वतर उपनिषद का स्वाध्याय आप लोग कर रहे हैं। इस उपनिषद के मंत्र दृष्टा श्वेताश्वतर ऋषि संपूर्ण उपनिषद को छह भागों में बांटा गया, अर्थात छह अध्याय विशिष्ट यह उपनिषद है। और उसके भी प्रथम अध्याय का विचार आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य प्रणीत शांकर भाष्य अनुसार विचार कर रहे हैं। यद्यपि दार्शनिक महल में इस भाष्य को लेकर के नाना प्रकार के वितर्कता है, परंतु उस वितर्क की ओर ध्यान न देकर के हम सब साधकों को उपनिषद अर्थ का निश्चय अर्थ को समझना चाहिए, इसीलिए भाष्य अनुसार विचार कर रहे हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद के प्रथम अध्याय में विशेष करके ब्रह्मवाद पर विचार है और यह ब्रह्म ही जगत का कारण है क्या, ऐसा प्रश्न उठाया गया, अथवा इस दृश्यमान शब्द स्पर्श रूप रस गंध विशिष्ट जो दृश्य वस्तु है, इस दृश्य के नाश्य के अविनाशी कोई ब्रह्म कारण हो सकता है क्या। इसीलिए प्रथम अध्याय के प्रथम मंत्र में ही प्रश्न रखा गया, किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता इत्यादि। अब प्रश्न है भाई, जगत को, जगत के कारण किसको माना जाए। सारे वेदांत प्रतिपाद्य जो अद्वितीय ब्रह्म अस्तित्व ब्रह्म स्वरूप, इसी ब्रह्म को ही जगत का अधीश्वर अथवा जगत के श्रष्टा माना जाए अथवा नहीं। अब प्रश्न है कि ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है, तो ये इस विषय में भी भाष्य अनुसंधान से मिला, बृहत्वात् बृंहणत्वात् वा ब्रह्म। अब ये शास्त्रीय जो अर्थ है, परिभाषा है, डेफिनेशन है, कई बार हम जो है इस संज्ञा को ध्यान में रख करके अर्थ का निश्चय करते, वो अर्थ भी धुंधला सा ही रह जाता। अब प्रश्न है कि ब्रह्म का अर्थ क्या है, तो ब्रह्म माने क्या है, ब्रह्म किसको बोलेंगे भाई, क्या कॉन्सेप्शन है, कॉन्सेप्ट क्या है ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब क्या। धात्वार्थ पर विचार नहीं करें, अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको बताने का कोशिश करें। ब्रह्म का मतलब क्या, जब धातु को देखते जो सबसे बड़ा है उस दिन मैंने विचार किया, कहा कि जो सबसे बड़ा है ऐसा करके भी हम सब जो है एक आकार को, एक फॉर्म को ही दिमाग में बैठाते हैं और उसको हम ऐसे मानते हैं ब्रह्म है, परंतु ये शब्द को ध्यान में नहीं, ब्रह्म माने क्या है, ब्रह्म माने क्या, ये ब्रह्म है, ये यह यह इदम इदम जो कुछ भी भास रहा है, अनुभव गोचर प्रतीति के गोचर हो रही है, ये सब दृश्य वस्तु ब्रह्म है अथवा नहीं? अगर उत्तर है कि दृश्य जो है अपने से अलग जो है वो ब्रह्म नहीं है, ऐसे ही आप कहेंगे वेदांती लोग, तो क्यों नहीं है? इसको अगर कोई बोले कि यही ब्रह्म है और आप जो कह रहे हैं ना नेदम ब्रह्म, तो इसके पीछे क्या कारण है? शास्त्र का एक निश्चय है, जग परिच्छिन्नम, जो जो परिच्छिन्न है, परिच्छिन्न सामान्यतया अत्यंता भाव उपलक्षित ब्रह्मत्वम, थोड़ा सा ध्यान देना है। और ये मुझे यही लग रहा है कि ये इसको अगर हम समझे तो थोड़ा सा ब्रह्म स्वरूप के बारे में कुछ बोध हो सकता है। परोक्ष का अत्यंत अभाव जहां है, उस अभाव के जो अधिष्ठान है वो है ब्रह्म। अपरोक्ष मतलब क्या है? सामने ना, परोक्ष को अच्छा और थोड़ा सा परोक्ष ना बल करके अगर ऐसा कहा जाए, परिच्छिन्न सामान्य अत्यंत अभाव उपलक्षित ब्रह्मत्वम। परिच्छिन्न शब्द का क्या है? हाँ, जो आकार से, जो परितः छिन्न शब्द को जब ध्यान में देते हैं, परिच्छिन्न बोलते हैं ना, परि मतलब चारों तरफ से, छिन्न मतलब कटा हुआ, जो कटा हुआ है, जो पृथक है, जो टुकड़ा है, और इस पृथकत्व विभक्तत्व कटा हुआ और इस परिच्छिन्न का जो अत्यंत अभाव जहां है, उस अधिष्ठान को कह रहे ब्रह्म। तो परिच्छिन्न किस किस रूप से आप करते हैं? किसी भी वस्तु को जब आप देखते हैं परिच्छिन्न रूप से, छोटा कट करके सब समझते हैं कि ये पुस्तक जो है ये टेबल नहीं, मेज नहीं, कपड़ा नहीं, पुस्तक है। ऐसे ही तो आप विभाग करते हैं ना कि ये पुस्तक है, इसको कैसे आप जाना कि ये नहीं है, ये माइक नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ये वस्त्र नहीं है, ये पुस्तक है। तो इसका मतलब कई जगह से आपने इसको कटा काट करके इसको अलग रूप से जाना कि इदम पुस्तकम, सीमित करके। अब जो संज्ञा डेफिनेशन दिया, परिच्छिन्न का अत्यंत अभाव जहां है, उस अभाव को बताने वाला जो सत्ता है वो है ब्रह्म। ध्यान देना चाहिए, प्रत्येक परिच्छिन्न को जो आप अनुभव कर रहे हैं, इस परिच्छिन्न का अभाव को जो अनुभव कराता है। अब आप रूप की ओर से देखते हैं तो ये काला है, नीला है, पीला है, तो काला, नीला, पीला, श्वेता, ये सब जो है अन्य कुछ नहीं है, ये रूप की ओर से, आंख की ओर से आपने इसको काटा। जब आपने कान से समझना चाहा तो ये मालकोश राग है, ये अमुक राग है, ये भैरवी है, तो उस राग रागिनियों से अपने शब्द को परिच्छिन्न किया, परिच्छेद किया, काटा, टुकड़ा किया। ठीक उसी प्रकार जब आप स्पर्श इंद्रिय के द्वारा अनुभव करना चाहते तो ये नरम है, कोमल है, ये कठोर है। तो ये जो स्पर्श इंद्रिय के जब द्वारा जब आपने समझना चाहा तो उसको कठोर, कोमल आदि के रूप में समझा। ठीक उसी प्रकार जब रसनेन्द्रिय के द्वारा समझना चाहा तो ये तिक्त है, ये मीठा है, ये खट्टा है, इस रूप से अपने काट करके समझा, टुकड़ा करके समझा। तो इसी प्रकार आपके पास जितने भी इंद्रियाएं हैं और इस इंद्रियों के द्वारा जो जो आप अनुभव करना चाहते हैं उस अनुभव के मूल में क्या है, सब कुछ आप जो है सीमित रूप से टुकड़ा करके ही समझ सकते हैं, संपूर्णतया समझ नहीं सकते। थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और सीमित जो हम देख रहे हैं, जान रहे, इस सीमित को देखना, जानना, समझना, सुनना, बोलना, ये सब को जो अनुभव करने का जो साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, इंद्रिय है, ये भी सीमित है कि नहीं? कान के द्वारा टेस्ट कर सकते हैं खट्टा है, मीठा है, सबके लिमिटेशन से सीमाएं हैं। आंख के द्वारा जो अनुभव करते हैं, रूपक ग्रहण कर सकते हैं, वो रसनेन्द्रिय के द्वारा संभव नहीं है। तो वस्तु, वस्तु ग्राहक करण, ये सब के सब जो है परिच्छिन्न है, कटा हुआ है। तो इस परिच्छिन्नता के द्वारा, इस परिच्छिन्न के जो अत्यंत अभाव के जो अधिष्ठान है उसको समझ नहीं सकते। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, कई बार मन में प्रश्न आता है कि ब्रह्म अगर सर्वत्र है, ईश्वर परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, तो उस परमात्मा परब्रह्म को क्यों नहीं हम जान सकते, समझ सकते, देख सकते? भगवत भक्तजन, ये जो परिच्छिन्नता है, इस परिच्छिन्नता के कारण रूप से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंचभूत के रूप में, पंचभूत के ग्राहक के रूप में जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, इंद्रियाएं हैं, ये सब के सब परिच्छिन्न है। और शास्त्र का निश्चय है परिच्छिन्न के अत्यंत अभाव के जो अधिष्ठान है, आप देखिए कितना परिनिष्ठित लक्षण है, इसमें कोई अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोष नहीं दे सकते। सारे परिच्छिन्नों के, परिच्छिन्नता के जो अधिष्ठान है वो है ब्रह्मा। सब परिच्छिन्न दृश्य जो कुछ भी आप अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि परिच्छिन्न हुए बिना परिच्छिन्न आप जान नहीं सकते, क्योंकि आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है ये सब के सब छोटा है, सीमित है, कटा हुआ है। असीमित को इस सीमित के द्वारा नहीं जान सकते। और संज्ञा दे रहे सारे सीमाओं के अधिष्ठान, सीमाओं के अभाव के अधिष्ठान, सीमाओं के अधिष्ठान नहीं, पूरे परिच्छिन्न अत्यंताभाव उपलक्षित जो अधिष्ठान, इसको अगर हिंदी में बोले परिच्छिन्न अत्यंताभाव के जो अधिष्ठान है वह है ब्रह्म। तो जहां जाकर के परिच्छिन्न कटा हुआ जितने भी विभक्त अलग अलग पृथक पृथक रूप से आप जान रहे, इसका अत्यंत अभाव जहां होगा, उस अभाव के जो अधिष्ठान है वो है ब्रह्म। अब ना तो हम इसको ब्रह्म कह सकते चूंकि ये परिच्छिन्न है, न इसको जानने वाला जो भी आपके पास करण है, इंस्ट्रूमेंट है, वो भी ब्रह्म नहीं है, क्योंकि उसको परिच्छिन्न का ही बोध होता है। और ये सब परिच्छिन्न जिसमें है, शेषी देही, ये भी ब्रह्म नहीं है, क्योंकि इस शरीर में ये सब इंस्ट्रूमेंट है, अतः शरीर भी परिच्छिन्न है। तो इस शरीर की परिच्छिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए, इंद्रियों की परिच्छिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए, और तज्जन्य जो अनुभव आप दृश्य रूप से पदार्थ के रूप में करते हैं, ये सब को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इसके द्वारा तो भाई असीमित को आप जान नहीं सकते। वही जो लिमिट लेस है, उसको आप लिमिट के द्वारा कैसे, कई बार हमारे मन में ऐसे कितने भी हम साधना करते हैं, जब भी ऐसा लगता है कि अरे भाई ईश्वर है, परब्रह्म है, वो हमारे परम प्रिय है, तो क्यों नहीं हम जान पा रहे। बहुत बड़ा एक वेदना है साधकों के लिए कि हम तप करते हैं, साधना करते हैं, अनुभव का विषय क्यों नहीं बन पाता। तो उस समय साधक को ये विचार करना चाहिए, शास्त्र के जो निश्चय है कि परिच्छिन्न अत्यंता भाव अधिष्ठान ब्रह्म, तो परिच्छिन्न के अत्यंता भाव के जो अधिष्ठान है वो ब्रह्म है। तो जग जत परिच्छिन्नम तद न ब्रह्म तद न ज्ञायम। इसीलिए महाराज यह एक ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है। इसलिए इंद्रियां, शरीर, दृश्य, ये सब जहां तक आपके गति है, वो सब को अच्छी तरह से विचार करके रखना चाहिए कि ये सब परिच्छिन्नता है कि नहीं। परिच्छिन्न शब्द को और शास्त्र में आप लोगों के भाषा में आप लोगों को पता है, परितः छिन्न, चारों तरफ से कटा हुआ है। किसी भी वस्तु को आप उठाइए, दृश्य जो भी जगत संसार है, ये या तो कालिक परिच्छिन्नता होगा, काल से कटा हुआ होगा, वस्तु से कटा हुआ होगा, अथवा देश से। तो तीनों से कटा हुआ जो है, परितः छिन्न जो है, वो कभी भी ब्रह्म। और इस परिच्छिन्न का अत्यंता अभाव जहां है, आप समझ में आ रहे हैं, पूरे परिच्छिन्न को हटाइए और इस परिच्छिन्न के अभाव, उस अभाव के जो अधिष्ठान है, अभाव को जिन्होंने, वो है ब्रह्म। एक मिनट, हाँ वो बोल रहा हूं, अनिर्वचनीय शब्द तो वेदांत के है, अनिर्वचनीय बोलने पर ना थोड़ा सा वो तो हमारे एक औजार है, हम उसको बचाने के लिए ढाल है, क्या अनिर्वचनीय बोल दे, मैं उसी को समझने के लिए कोशिश कर रहा हूं। अनिर्वचनीय है, फिर भी एक संज्ञा जब दिया उसको भी थोड़ा विचार करना चाहिए। फिर नेति नेति बोल रहे, ठीक है, नेति नेति बोलने पर भी यह नहीं, तो क्या है, क्या है इति, मतलब क्या, वही तो समझ, इति मतलब ब्रह्म बोलने से नहीं होगा, अभाव के क्या है क्या, सबको थोड़ा विचार करना है, शब्द पर ध्यान नहीं देना है, अर्थ को लेकर के अपने मन स्तर पर जाकर के विचार करे कि सभी परिच्छिन्न वस्तुओं का जो अभाव है, और वो अभाव क्या है, जैसे ये पुस्तक अभी नहीं है फिर आ गया, ऐसा नहीं, अत्यंत अभाव कभी भी नहीं रहता है, उस अभाव के जो अधिष्ठान है वो है ब्रह्म। थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। कल मैं वही देख रहा था, वो क्या नाम है, चित सुखी में ये लक्षण दिया, मुझे इतना अच्छा लगा कि कितना परिनिष्ठित लक्षण है, परिच्छिन्न अत्यंता भाव अधिष्ठान ब्रह्म। जगत जन्मादिकारण इधर आदि आदि अनेक प्राथमिक रूप से कह सकते हैं। तो आकड़ जो ग्रंथ है, अल्टीमेट जो ग्रंथ है, चित सुखिया द्वैत सिद्धि, वहां जाकर के ब्रह्म का लक्षण ये बता दिया, भाई तुम कुछ भी अब तक समझे हो, समझने के प्रयत्न कर रहे हो, ठीक है, परंतु परिनिष्ठित लक्षण जो है यह है कि जो जो परिच्छिन्न है, उस परिच्छिन्न के जो अत्यंत अभाव है, उस अभाव के जो अधिष्ठान है वो है ब्रह्म। इसलिए ब्रह्म माने क्या है, मतलब क्या है, वो अभाव को अधिष्ठान। इसीलिए जो जो परिच्छिन्न है उसको, उसके अस्तित्व किसके ऊपर निर्भर है भाई? मेरे से जो कुछ अलग है मैं जान रहा हूं, इसके अस्तित्व किसके ऊपर डिपेंडेंट है? जानने वाला अगर ना हो तो इसको, इसका कोई वैल्यू है महाराज? तो वो जो चित सत्ता है वो एक है, वो परिच्छिन्न नहीं है, वो भूमा है, वो व्यापक है। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो बॉडी है, इसमें ज्ञाता एक है कि अनेक है? एक ही बताएंगे, क्योंकि जो वही एक ज्ञाता जो है, कभी सुन रहे हैं, कभी देख रहे हैं, कभी बोल रहे हैं, कभी स्वाद ले रहे हैं, कभी अनुभव कर रहा है, कभी विचार कर रहे हैं, कभी ग्रहण कर रहे हैं, कभी चल रहा है। अगर यहां अनेक होता तो फिर अलग। इसलिए एक जो सत्ता है, उस एक में अभी जो अज्ञान अविद्या दशा में जो अनुपरिच्छिन्न रूप से पृथक पृथक रूप से जान रहे हैं, उसको भाषित करने का सामर्थ्य उसमें है। ठीक उसी प्रकार सारे अभाव के अत्यंत जो अभाव है, उसके जो अधिष्ठान है वो एक अद्वितीय चैतन्य, वही है ब्रह्म। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि इस प्रसंग पर इसको थोड़ा विचार करना चाहिए। चिंतन कीजिए, अभाव के फीलिंग्स बिल्कुल नहीं है क्या? थोड़ा, क्योंकि हम जो है अभाव का फीलिंग्स जो करते हैं ना, ये परिच्छिन्न के अभाव को बोध हम करते, घट नहीं, पट नहीं, अमुक नहीं, परंतु सारे अभाव के अत्यंत अभाव बोल रहे हैं ना, इसका मतलब अल्टीमेट एकम एव अद्वितीय, और कोई अस्तित्व और कोई परिच्छिन्न वस्तु, अत्यंत शब्द का यही अर्थ है। अभाव भी तो चार प्रकार के बताए ना, आप लोग जानते हैं। तो अत्यंत अभाव मतलब क्या? कभी भी परिच्छिन्न अस्तित्व का उपस्थिति, प्रेजेंसनेस है ही नहीं।